राधिका श्रुति के साथ दिल्ली आई हुई थी। पिछले दिनों जो भी हुआ था उसके बाद राधिका यही चाहती थी कि केशव को इस सच का पता चल जाए कि ईशिका उसकी बेटी है। ईशिका पहले से ही इस सच को जानती थी कि आदर्श उसका बाप नहीं था, पर उसे अपने असली बाप का नाम भी पता नहीं था। ऊपर से राधिका को तकलीफ ना हो इस वजह से वो राधिका से पूछ भी नहीं पा रही थी। श्रुति ने उसे एक बार फिर इस मामले में सोचने को कहा, क्योंकि केशव एक जिद्दी इंसान था। अपनी जिद में आकर वो ईशिका और राधिका को अलग भी कर सकता था। राधिका ने उसे इतने साल सच छुपाकर रखा था, इस बात के लिए वो गुस्सा भी हो सकता था। राधिका ने श्रुति की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकती हूँ, पर इतने सालों में मिस्टर सिंघानिया काफी मैच्योर हो गए हैं। ईशिका उनके सामने आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि वो उनकी बेटी हो सकती है क्या, जबकि उसकी शक्ल उनकी माँ जैसी है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब तक आप दोनों के रिश्ते से अनजान हैं? श्रुति ने हल्की हैरानी से पूछा। उसकी बात सुनकर राधिका ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, उस रात हम दोनों नशे में थे और मैं उसे वहीं पर अकेले छोड़कर आ गई थी। मैंने उसके मैसेजेस वगैरह के जवाब भी नहीं दिए और आखिरी बार मिले तो उससे कभी न मिलने की कसम ले ली। इतने में तो वो समझ ही गया होगा, तभी तो वो उस कसम का अब तक मान रख रहा है और उसने कोई सवाल नहीं पूछा। जब उन्हें सबका आभास है फिर भी अब तक वो शांत है, ये बात वाकई हैरानी वाली है, श्रुति बोली। हाँ, हैरान कर देने वाली तो है, पर मैंने तुम्हें बताया ना कि बीते सालों में वो बहुत मैच्योर हो गया है। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं, थोड़ी ही देर में डिनर के लिए निकलना होगा, मैं आराम करना चाहती हूँ, राधिका ने जवाब दिया। वो इस मामले में ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी, तो वहीं श्रुति ने भी उसके मना करने पर आगे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने दो कमरे बुक किए थे, श्रुति अपने कमरे में चली गई। शाम के लगभग 7 बजे के करीब राधिका डिनर के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने फॉरेस्ट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिसके साथ लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज था। राधिका को हमेशा से ही ज्यादा गहने पहनना पसंद नहीं होता, इसलिए उसने रिंग और स्टड्स के अलावा और कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी। हाथ में क्लच लेने के बाद वो काफी खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। श्रुति ने राधिका के लिए कैब मंगवाई और वहां से वो सीधे एक 7-स्टार होटल के डाइनिंग एरिया में पहुंच गई थी। केशव उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। केशव ने इस वक्त ब्लैक सूट पहना हुआ था। पिछले 23 सालों में वो अपनी मर्जी से पहली बार दोनों वापस मिल रहे थे। ये इच्छा राधिका ने ही जताई थी। वो चाहती थी कि इस डिनर पर अभिमन्यु और ईशिका भी मौजूद रहें, लेकिन अभिमन्यु के बहाना बनाने की वजह से वो वहां नहीं आ पाए थे। राधिका अपनी जगह पर आकर बैठी और केशव को मुस्कुराकर हेलो कहा। केशव राधिका के सामने इतने सालों बाद आने पर थोड़ा झिझक रहे थे। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे उस कसम से आज़ाद कर दिया है? उस कसम से तो हम उसी दिन आज़ाद हो गए थे जब अनजाने में ही सही एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंचे थे, राधिका ने मुस्कुराकर कहा। केशव की झिझक भी थोड़ी कम हो गई थी। उन्होंने मेन्यू कार्ड राधिका के सामने रखते हुए कहा, अच्छा तुम अपने हिसाब से ऑर्डर कर लो और कुछ भी ऐसा मत ऑर्डर करना जिससे तुम्हारी हेल्थ और ख़राब हो। इतने सालों में क्या हाल कर लिया है तुमने अपना, तुम्हें भी दोष नहीं दिया जा सकता। तुमने जो भुगता है उसके बाद ये सब होना जाहिर सी बात है, बोलते हुए केशव थोड़ा गुस्सा हो गया था। जब भी वो आदर्श के बारे में सोचता उसका गुस्सा बढ़ जाता था। राधिका ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाकर कहा, अभी भी तुम्हें इतना ही गुस्सा आता है? चलो खुद को शांत करो, मैं फूड ऑर्डर करती हूँ। राधिका ने वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर कर दिया था। उसे ज्यादा हैवी खाना अलाउड नहीं था, इसलिए उसने अपने लिए सिंपल सलाद और एक फैंसी सी लेकिन हेल्दी डिश मंगवाई थी। केशव के लिए भी उसने वही ऑर्डर किया था। केशव हैरान था कि आज भी राधिका को उसकी पसंद के बारे में सब याद था। केशव ने एक नज़र राधिका की तरफ देखा और अपने मन में कहा, आज भी तुम्हें मुझसे जुड़ी हर एक चीज़ याद है, फिर तुमने मुझसे अलग होने का फैसला क्यों लिया राधिका? हम दोनों की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती अगर तुमने मुझसे शादी की होती। ना तुम्हें आदर्श और उसकी गर्लफ्रेंड की चालबाजी को सहन करना पड़ता और ना ही मुझे अकेले जिंदगी बितानी पड़ती। केशव अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तभी राधिका की आवाज सुनकर उनका ध्यान टूटा। राधिका ने गंभीर आवाज में कहा, जब तक खाना आ जाता है तब तक बात कर लेते हैं। हाँ, तुमने बताया नहीं कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? तुम्हारे कहने पर मैंने ईशिका और अभिमन्यु को भी कॉल किया था, लेकिन ईशिका ने पहले हाँ कही थी और बाद में मना कर दिया। जरूर अभिमन्यु ने ही उसे ना करने को कहा होगा, केशव ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम उनसे बाद में बात कर लेंगे, राधिका बोली। ईशिका का जिक्र होते ही केशव के दिमाग में ईशिका की शक्ल घूमने लगी जो उसकी माँ से मिलती थी। एक सवाल उन्हें काफी दिनों से खाए जा रहा था, आज मौका था तो वो राधिका से इस बारे में सब पूछ लेना चाहते थे। अचानक केशव के चेहरे के भाव ठंडे हो गए और उन्होंने राधिका से कहा, देखो अब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है।
मुझे सब समझ आ रहा है कि हमारा रिश्ता क्यों टूटा था। क्या तुम्हें ये लगा कि मेरी सोच इतनी छोटी है कि मैं तुम्हें अपनाने से इनकार कर दूंगा? मैंने कभी तुम्हारे सामने ये जाहिर ना किया हो, पर तुम मेरी फीलिंग्स को समझती थी राधिका। मैं तुम्हें पसंद करता था। राधिका हैरानी से केशव की तरफ देखने लगी। वो उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। उसने तुरंत पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा है। और मैंने कब कहा कि तुम्हारी सोच छोटी है? हम अलग क्यों हुए थे, इस बारे में मैं बात करने के लिए आई थी। लेकिन लगता है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कुछ है। ऐसा करो, पहले तुम ही बता दो। केशव ने सिर हिलाया और कहा, ईशिका की शक्ल मेरी माँ से मिलती है राधिका, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे बताओ, मेरे घर कौन से शख्स ने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जिसकी सजा तुमने मुझे दी? ईशिका उसी की बेटी है ना? केशव की बात सुनकर राधिका आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी। उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि केशव को अभी भी याद नहीं आया था कि उस रात उनके बीच क्या हुआ था। राधिका की चुप्पी पर केशव ने आगे बताया, मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ और ना ही कभी उठा सकता हूँ। जरूर मेरी फैमिली में से किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की होगी। उसका ट्रॉमा तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, जिस वजह से तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मैं ईशिका को उसका हक दिलाना चाहता हूँ, बस एक बार बता दो कि वो किसकी बेटी है। केशव जैसे जैसे बोलता जा रहा था, राधिका के माथे पर पसीने की बूंदे उभरने लगी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और इस वक्त उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव उभर आए थे। इतने साल हो गए थे, लेकिन केशव को अब तक याद नहीं आया था कि उसने राधिका के साथ क्या किया था। ये उसी की जिद थी जब नशे में वो राधिका के करीब आया था। राधिका जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया केशव सिम्हानिया, मुझे लगा था कि बीते सालों में तुम बदल गए होंगे, चीजों को देख परख कर फिर डिसीजन लेते होंगे, लेकिन आज भी वही सब हो रहा है। तुम बस उन्हीं चीजों पर गौर करते हो जो तुम्हें आंखों के सामने दिखाई देती हैं। मेरी गलती है कि मैं तुमसे यहाँ मिलने आई। उम्मीद लगाकर रखिए कि मेरे दूर जाने के बाद तुमने उस कारण का पता लगाने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से हम अलग हुए। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, केशव ने अपनी सफाई में कहा।
क्या तुमने कभी उस वजह के बारे में पता लगाने की कोशिश की जिसकी वजह से मैं तुमसे अलग हुई थी? राधिका ने सख्ती से पूछा। नहीं, लेकिन अब मैं पता लगा लूंगा। ये सब मेरी ही फैमिली के किसी मेंबर की वजह से हुआ है। तुम बस एक बार नाम बता दो, मैं उसे वो सजा दूंगा कि वो अपनी मौत के लिए तरसेगा, केशव गुस्से में बोला। राधिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। श्रुति का डर सही साबित हुआ। केशव को अब तक उस रात का पता नहीं चला था और ना ही उसने पता लगाने की कोशिश की थी। ये वैसा ही था जब अस्पताल में केशव राधिका की हेल्थ के बारे में पता लगाने आया था। तब उसने सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया और ये तक पता लगाने की कोशिश नहीं की कि क्या सच में राधिका ईशिका को देखकर ही बीमार हुई थी। बिना सच जाने ही ईशिका को सजा देने पर उतारू हो गया था। राधिका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा दुख उम्मीदें देती है, और मैंने तुमसे एक बार फिर उम्मीद लगाकर खुद को तकलीफ पहुंचाई है। आज मैं तुमसे फिर कहती हूँ, केशव सिंघानिया, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, और मैं मर भी जाऊँ तो तुम मुझे देखने मत आना। उम्मीद है कि पिछली बार की तरह तुम इस वादे को निभाओगे। केशव को समझ नहीं आया कि आज राधिका उसे किस गलती की सजा दे रही है। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया और राधिका वहां से चली गई थी। दूसरी तरफ पलटते ही राधिका की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। वहीं दूसरी तरफ डिनर के बाद अभिमन्यु अपने विला के गार्डन एरिया में घूम रहा था। चलते हुए अचानक उसके सामने पार्थ आ गया था। पार्थ पूरे दिन अपने कमरे में था और उसने किसी से बात नहीं की थी। खाना भी उसने रूम में ही मंगवाया था और फिर उसके बाद वो भी अभिमन्यु की तरह वॉक करने के लिए गार्डन में आया था। अभिमन्यु को देखकर पार्थ के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, खाने के बाद वॉक करना सही रहता है मिस्टर राजवंश, वैसे मैं तुम्हें ये कहकर क्यों बुला रहा हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम्हें नाम से बुलाना सही रहेगा। नो थैंक्स, मुझे रिश्ते निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस घर में मेरा रिश्ता सिर्फ दो ही लोगों के साथ है, एक मेरा दादी के साथ और दूसरा अपनी पत्नी के साथ। अभिमन्यु ने इतना ही कहा और फिर दूसरी तरफ जाने के लिए पलटने लगा। अभिमन्यु ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि पार्थ ने पीछे से थोड़ी तेज आवाज में कहा, दो लोगों का नाम लेकर तुम तीसरे इंसान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अभिमन्यु। तुम्हें क्या लगा कि तुम बाकी घर वालों को बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ईशिका प्रेग्नेंट है? क्या अपने होने वाले बच्चे के साथ भी तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखना है? अभिमन्यु जल्दी से पार्थ की तरफ पलटा। उन्होंने ईशिका की प्रेग्नेंसी उसकी सिक्योरिटी के लिए ही छुपा कर रखी थी, लेकिन पार्थ इस बारे में जानता था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वो इस बात का फायदा भी उठाने वाला है। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले पार्थ ने कहा, कल होने वाले शेयर मीटिंग में मिलते हैं छोटे भाई, फिर पता चलेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा रिश्ता कितना मायने रखता है। इतना कहकर पार्थ वहां से जाने लगा। वो ऐसा इंसान नहीं था जो अचानक से उठकर आ जाए और अपना हक मांगने लगे। पार्थ वहां पूरी तैयारी के साथ आया था और उसकी वो तैयारी जल्द सबके सामने खुलने वाली थी। थोड़ा ध्यान गोल्डन ट्रैप ऑफ बिलियनेयर पर भी दे दे, उसमें क्या कमी है जो उसे कोई पढ़ नहीं रहा।